ಯಸ್ಯ ಭೂಮಿಃ ಪ್ರಮಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಉತೋದರಂ ಇವಂ ಯಶ್ಚಕ್ರೆ ಮೂರ್ಧಾನಂ ತಸ್ಮೈ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಸ್ಯ ಸೂರ್ಯಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಚಂದ್ರಮಾಶ್ಚ ಪುನರ್ನವಃ ಅಗ್ನಿಂ ಯಶ್ಚಕ್ರಾಸ್ಯಂ ತಸ್ಮೈ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಸ್ಯ ವಾತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಚಕ್ಷುರಂಗಿರಸೋಭವನ್ ದಿಶೋ ಯಶ್ಚಕ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನೀ ತಸ್ಮೈ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯೋ ಭೂತಂ ಚ ಭವ್ಯಂ ಚ ಯಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ಯಶ್ಚಾಧಿತಿಷ್ಠತಿ ಸ್ವರ್ಯಸ್ಯ ಚ ಕೇವಲಂ ತಸ್ಮೈ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ.
ದೇವಿಯೋ ಸಜ್ಜನೋ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಜಿಗೆ ತ್ವರ ಲಿಖಿತ ಆರ್ಯೋದ್ದೇಶ್ಯ ರತ್ನ ಮಾಲಾ ಕೇ ಅಲಗ ಅಲಗ ವಿಷಯೋ ಪರ ಹಮ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ. ಪಿಛಲಿ ಬಾರ ಹಮನೆ ವರ್ಣ ಔರ್ ಆಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮೋ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕಿ. ಉಸ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮುನ್ನೆ ವರ್ಣೋ ಕಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರೋ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕಿ. ಆಜ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕಾ ವಿಷಯ ಹೇ ದೇವತಾ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಔರ್ ಪಿಶಾಚ. ಜೋ ಶಬ್ದ ಹಮ ಸುನತೆ ಹೈ ಪುರಾಣೋ ಮೇ ಪಡ್ತೆ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ಮತಲಬ್ ಹೈ ಉಸೆ ಕಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ. ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಲಿಖತೆ ಹೈ, ಧ್ಯಾನ ರಖಿಯೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಕಾ ಅಪನಾ ಕೋಯಿ ವಿಚಾರ ನಹಿ ವೋ ದೇತೆ ಹೈ. ಕಹತೆ ಹೈ ಜೋ ಭಿ ಮೈ ಕುಛ ಕಹ ರಹಾ ಹೂ ಲಿಖ ರಹಾ ಹೂ ವೋ ವೇದ ಸೆ ಲೇಕರ್ ಜೈಮಿನೀ ತಕ್ ಹಮಾರೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಜೋ ಹೈ ಮೈ ಬಸ್ ಉಸಿ ಕೋ ಆಪಕೆ ಸಾಮನೆ ರಖತಾ ಹೂ. ತೋ ದೇವಾಜ್ ಆರ್ ದೋಜ್ ಹೂ ಆರ್ ವೈಜ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಜೋ ಜ್ಞಾನಿ ಹೈ, ವಿದ್ವಾನ್ ಹೈ, ಸಮರ್ಪಿತ ಹೈ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೋಕ ಹೈ, ಅಚ್ಚೆ ಲೋಕ ಹೈ, ವೋ ದೇವತಾ ಹೈ. ಅಸುರಾ ಜೋ ಫುಲಿಶ್ ಹೈ, ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಹೈ, ವೋ ಅಸುರ ಹೈ. ರಾಕ್ಷಸ ಜೋ ವಿಕೆಡ್ ಹೈ, ದೋಜ್ ಹೂ ಆರ್ ಸೀನರ್ಸ್, ದೋಜ್ ಲವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ರಾಕ್ಷಸ. ಅಂಡ್ ಪಿಶಾಚಾರ್ಜ್ ದೋಜ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಿಲ್ಥಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಹೈ, ಇಟ್ ರಿಫ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್ ದ ದೇವಾಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಅಸುರಾಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಗಾಡ್. ಯೇ ಭಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೈ, ಅಬ್ರಾಹಿಮಿಕ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏಕ್ ಗಾಡ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಏಕ್ ಡೆವಿಲ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಡೆವಿಲ್ ಜೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಆಂಟಿ ಗಾಡ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆಪ್ಕಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇ ಐಸಾ ಕಹೀ ಭಿ ಕುಛ್ ಭಿ ನಹೀ ಹೈ. ದ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಮನ್ಸ್, ಪಿಶಾಚಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀನೀಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್. ಐಸಾ ಕಹೀ ಆಪ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಕಹೀ ವರ್ಣನ್ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ. ಆಪ್ನೆ ಕಭಿ ಪುರಾಣ ಕಿ ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ಕಹಾನಿಯಾ ಆಪ್ನೆ ಪಡ್ತೆ ಹೈ, ಸುನತೆ ಹೈ, ಆಪ್ನೆ ಕಭಿ ನೋಟ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಆಪ್ ಕಹತೆ ಹೈ ರಾವಣ ರಾಕ್ಷಸ ಥಾ. ರಾವಣ ಕೆ ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ ಕ್ಯಾ ಥಾ? ವಿಶ್ರವಾ. ವೋ ಕೌನ್ ಥಾ? ರಿಷಿ ಥಾ. ರಿಷಿ ಮೇ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ವೇ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಾ ಬೇಟಾ ಏಕ್ ರಾಕ್ಷಸ ಬನ್ನಾ. ವಿಶ್ರವಾ ಕಾ ಔರ್ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ಥಾ, ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಏಕ್ ಕುಬೇರ್. ಕುಬೇರ್ ಕೋ ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಮಾನ್ತೆ ಹೋ? ದೇವತಾ. ಉಸ್ಕಾ ಔರ್ ಏಕ್ ಬೇಟಾ ಥಾ, ವಿಭೀಷಣ. ಸೀರಿಯಲ್ ಮೇ ದೇಖತೆ ಹೋ, ಉಸ್ಕಾ ಸಕಲ್ ಸೂರತ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ? ಇನ್ಸಾನ್. ಮತಲಬ್ ಏಕ್ ಹೀ ಮಾ ಬಾಪ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ, ಇನ್ಸಾನ್ ಮಾ ಬಾಪ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೈ. ಏಕ್ ದೇವತಾ ಬನ್ತಾ, ಏಕ್ ರಾಕ್ಷಸ. ಬಹುತ್ ಸಾರೇ ರಾಕ್ಷಸ ಬನ್ತೆ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ವಗರ. ಏಕ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಬನ್ತಾ ಹೈ. ಮಹಾಭಾರತ ಮೇ ದೇಖಿಯೇ, ಜಿನ್ಕೋ ಆಪ್ ರಾಕ್ಷಸ ಔರ್ ದೇವತಾ ಔರ್ ಮನುಷ್ಯ ಮೇ ಕೌಂಟ್ ಕರ್ತೆ. ಕಂಸ ರಾಕ್ಷಸ ಹೈ, ಅಸುರ ಹೈ, ಉಸ್ಕಿ ಬೇಹನ್ ದೇವಕಿ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೈ, ಮನುಷ್ಯ ಹೈ. ಕಂಸ ಔರ್ ದೇವಕಿ ಕೆ ಪಿತಾ ಕೌನ್ ಹೈ? ಅಗ್ರಸೇನ್, ಮನುಷ್ಯ ಹೈ. और देवकी का बेटा देव है, भगवान है, कृष्ण बलराम वगैरह। इसका मतलब कभी ध्यान देते तो समझ में आता, इसका मतलब इवन पुराणों में भी राक्षस कोई अलग स्पीस है, मनुष्य कोई अलग है, असुर कोई, देवता कोई अलग है जो स्वर्ग में रहते हैं। अगर आप स्टोरीज को ठीक से देखें तो भी आपको पता चलेगा हमारे में से जिसका गुण कर्म स्वभाव अच्छे हो जाते हैं वही देवता कहलाते हैं, जिनका व्यवहार बहुत खराब हो जाता है और राक्षस हो जाते हैं, जो स्टूपिड और फुलिश डिसीजन लेते हैं वो असुर होते हैं, जो गंदे होते हैं, फिल्थी होते हैं, जिनका व्यवहार आचरण वो पिशाच होते हैं। इवन आपके स्टोरीज में भी है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऑब्जर्व करने की जरूरत है और पंडित और बाबाओं की बात को इग्नोर करके अपनी कॉमन सेंस लगा के स्टोरीज को थोड़ी समझने की जरूरत है, आपके पास अपनी बात आ जाएगी। गीता में एक चैप्टर है, 16वां चैप्टर है, गीता तो मोस्ट ऑफ पीपल पढ़ते हैं, उसमें बताता है देवता कौन है, असुर कौन है। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, अभयम सत्व संशोधि। आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होगा, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शांतिरपैशुनम। अगर इनमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ये सब देवताओं के गुण है। दया भूतेश्वलो लुप्त्वम, तेश्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम, तेज क्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवी, मभिजातस्य भारत। ये भारत, भरत वंश के संतान अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं, ये सारे गुण दैव गुण है, जिसके अंदर ये गुण आ जाए वो सब देव कहलाते हैं। कौन कौन वो गुण है? फियरलेसनेस, क्लीनिंग, अनसीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑन विजडम, रेडीनेस टू गिव, देने की प्रवृत्ति, सेल्फ कंट्रोल, जितेंद्रिय, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ, रेगुलर स्टडी, सेल्फ स्टडी, बहुत बार हम चर्चा करते हैं, स्वाध्याय, ऑस्टेरिटीज, कैंडर, हार्मलेसनेस, अहिंसा, ट्रुथ, एब्सेंस ऑफ एंगर, रेनुंसिएशन। अगर आपके पास गुस्सा है तो आप इंसान हैं, पर अगर आपने गुस्सा को जीत लिया है तो आप देवता बन गए, अगर आपका गुस्सा ओवरफ्लो करता है तो आप राक्षस बन गए। दैट थिंग। अगर आप सच झूठ मिला मिला के बोलते हैं तो आप इंसान है, नॉर्मल है, बिल्कुल सच बोलते हैं तो आप देवता बन गए, बिल्कुल झूठा है तो राक्षस बन गए। इसी को आप अपने साथ मेजर करिए। पीसफुलनेस, एब्सेंस ऑफ क्रूकेडनेस, कंपैशन टुवर्ड्स बीइंग्स, प्राणी मात्र के प्रति दया। हम हिसाब लगाते हैं कहां दया करें ना करें, ये इंसान है, नॉर्मल इंसान है, उसकी दया भी बड़ा रिलेटिव होता है, कहां दया होगी नहीं होगी। जिसको खाना है वो सब दया की वहां जरूरत नहीं है, वो मुर्गा हो बकरी हो उनको भगवान ने दया देने की नहीं, पर गाय के प्रति दया करनी है। तो ये हम अपने हिसाब से, ये इंसान की फितरत है। पर अगर आप सभी प्राणी मात्रों के प्रति दया भाव रखते हैं तो आप देवत्व को पा जाते हैं। अगर किसी को भी नहीं छोड़ते, कहीं कोई दया नहीं, माया नहीं, कुछ नहीं, तो अब राक्षस हो जाते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति के गुण बढ़ते हैं, ये देवत्व की ओर जाता है। जैसे जैसे गुण घटते हैं, दोष बढ़ता है, तो राक्षस की ओर जाता है। नॉन कॉवर्टनेस, जेंटलनेस, मॉडेस्टी, अब्सेंस ऑफ फिकलनेस, विगर, फॉरगिवनेस, फर्टिट्यूड, प्यूरिटी, अब्सेंस ऑफ हैट्रेड, अब्सेंस ऑफ प्राइड, दीज आर द मार्क्स ऑफ देवत्व। वो अर्जुन, सबके अंदर किसी में थोड़ा है, किसी में ज्यादा है। अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी में है प्रश्न, तो फिर आम इंसान होता है। अगर ये क्वालिटी आपकी जितनी बढ़ती जाएगी, तो वो देवत्व बढ़ता जाएगा। इसीलिए स्वामी दयानंद लिखते हैं कि मेरे नजर में देवता वो है जो ज्ञानी है। अब ज्ञानी का मतलब मत सोचिए कि आजकल ज्ञानी से आप ये जर्नलिस्ट प्रोफेसरों को मत ज्ञानी समझिएगा। वो तो प्रोफेशनली एकेडमिशियन है, एकेडमिक उनका प्रोफेशन है। पैसा कमाने का माध्यम एक इंजीनियर इंजीनियरिंग से कमाता है, ये जूता बनाने वाला जूता बना के बनाता है, सामान बेचने वाला सामान बेच के बनाता है, कोई पढ़ाई को ज्ञान को बेच के पैसा कमाता है। सो डोंट थिंक दैट दे आर नॉलेजेबल पर्सन, वाइज मैन। लर्नड पर्सन एक अलग चीज होता है, वाइज मैन दूसरी बात होती है। प्रोफेसर के घर में भी उतनी ही लड़ाइयां होती है जितने उसके फेल हुए बच्चों के घर में लड़ाइयां होती है। प्रोफेसर भी उतना ही बेईमान मिलता है जितना अनपढ़ आदमी बेईमान मिलता है। सो डोंट काउंट प्रोफेसर्स आर वेरी वाइज मैन एंड इलिटरेट पर्सन आर वेरी अनवाइज मैन। नहीं, ये वो लर्नड पीपल है, काफी सारे किताबें पढ़ा है अपने नाम पैसा कमाने के लिए। इसने बहुत कम पढ़ा है तो कम नाम है, कम पैसा है, दैट्स इट। एक पढ़ा लिखा तोता, एक अनपढ़ तोता, पहले भी हमने आपको स्टोरी सुनाई थी ऐसे। तो स्वामी जी कहते हैं जिसके अंदर वाइज मैन मतलब जिसके अंदर स्मार्टनेस है, जो समझता है चीजों को, जो सही है और गलत को फर्क करना जानता है, वो देवता है। वैसे तो पहले भी हमने चर्चा की ईश्वर के प्रसंग में पहले, कि देवता जो शब्द है, जिस रूट से बना है, वर्बल रूट से, धातु से बना है, दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवती दिवा, जो कुछ देता है, जो हमारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट करता है, जो हमें शाइन करने में हेल्प करता है, और जो खुद शाइनिंग है, वो सब देवता होते हैं। हमारे माँ बाप हो, गुरुजन हो, पेड़ पौधे हो, हवा हो, पानी हो, आकाश हो, सूरज हो, चांद हो, कोई भी, जिसको हमारे एग्जिस्टेंस में या हमारे फलने फूलने में जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो सब देवता है। इसीलिए हम माता पिता आचार्य पानी हवा पेड़ पौधे गाय बकरी सबको देवता मानते, क्यों? इनका लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है। स्वामी जी एक दूसरे लेवल पर बात करते हैं कि देवता का ये भी, इंसानों में भी जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो भी देवता होते हैं। जिनका गुण स्वभाव अच्छा होता है वो भी देवता है, ऐसा हमारे वेद से लेकर शास्त्रों में इसकी प्रतिपादन है। अब असुर कौन है? क्योंकि गीता आपको ज्यादा समझ में आती है और गीता आप ज्यादा मानते हैं। मुझे एक व्यक्ति एक दिन बोले कि आप ठीक है वेद उपनिषद उपरा पर बोलते हो, ठीक है, पर गीता पर बोलो ना, हमें गीता पर ज्यादा भरोसा है। मतलब उनके लिए जो जो ऑथोरिटी है वो गीता है। तो बीच में हमने दो साल पहले, एक साल पहले गीता का एक चैप्टर शुरू किया था, तो कुछ लोगों ने बोला कि बड़ा अच्छा कि आपने गीता पर बोला, बड़ी तसल्ली मिलती है। बात वही है, वही बात करते हैं वेद और उपनिषद के नाम लेकर, तो थोड़ी कम श्रद्धा हो जाती है। ये पता है ये लोग कौन है? हिंदू हैं। हंसी क्यों आती है? जो कहता है वेद उपनिषद में कम श्रद्धा है, पर कहते हैं हम हिंदू हैं। ओके, ठीक है, आपकी मर्जी। तो गीता पर, गीता के नाम पर वही चीजें बोलो तो श्रद्धा उमड़ पड़ती है। ये हिंदू हैं, ये ध्यान देने की बात। ये क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं है जो कहते हैं कि हम वेद उपनिषद पर कम श्रद्धा है, ये हिंदू लोग हैं। हंसना इसी बात पर होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, इसीलिए मैंने गीता को कोट कर रहा हूं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। कहेंगे कहां वेद उपनिषद पुरानी चीजें उठा लाते हैं और हमें उल्लू बनाते, नहीं, आपकी भाषा में आपको बोलते हैं, आपकी शास्त्र जिसको आप मानते हो उसी शास्त्र को कोट करते हैं। वेद उपनिषद हम अपने लिए रख देते हैं, अपने बच्चों के लिए, आपके लिए तो गीता में कोट करते हैं। क्या कहा गीता में, देखिए, असुर कौन है, दम्भो, मेरे साथ बोलिएगा, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हिपोक्रेसी, इग्नोरेंस, एरोगेंस, सेल्फ कॉन्सिट, मैं ही सब कुछ हूं। आप जो पुराणों में राक्षसों के कैरेक्टर पढ़ते हैं, कंस हो, रावण हो, हिरण्यकश्यप, एक स्टोरी आप बहुत जानते हैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की, होली के समय हर कोई कोट करता है। देखिए, हिरण्यकश्यप को आप क्या मानते हो कि राक्षस है, और उसका बेटा इंसान है, भक्त है, विष्णु का भक्त माना जाता है, वो इंसान है। जब आप टीवी में सीरियल देखते हो, प्रहलाद इंसान की तरह दिखता है, उसका बाप राक्षस की तरह दिखता है। अब ये तो फिल्म बनाने वालों की, आपको इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग कपड़े पहना देते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी वैसे ही कपड़े पहनता है, हमारे में से ही वही पैंट शर्ट कपड़े पहनने वाले भयंकर राक्षस होते हैं और बड़े उच्च कोटि के देवता भी होते हैं। हर सोसाइटी में ये होते हैं। तो गीता में श्री कृष्ण लिखते हैं, दंभ जिसके अंदर हिपोक्रेसी हो, एरोगेंसी हो, सेल्फ कॉन्सिट, अपने आप को बड़ा समझता हो। सब पुराणों की कहानियों में राक्षसों को देखिए, कौन होते राक्षस, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, किसी के अपने सामने किसी को नहीं मानते, भगवान को गालियां देते हैं, एंगर एंड ऑल्सो हार्शनेस एंड इग्नोरेंस बिलोंग टू वन हु इज बर्न फॉर ए डिमोनियकल स्टेट, ओ पार्थ, द डिमोनियकल नो not what to do and what to refrain from, neither purity nor right conduct nor truth is found in them. Etam drishtim avastambhya, boliega, nashtatmanol pabuddhayah prabhavanti ugra karmanah क्षयाय जगतो हितः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः। कृष्ण लिखते हैं, होल्डिंग दिस व्यू, दीज रिन्यूड सोल्स, र्यून्ड सोल्स ऑफ स्मॉल इंटेलेक्ट एंड फर्स्ट डीड्स कम फोर्थ एज द एनिमीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन। आजकल देखिए टेररिस्ट लोग, टेररिस्ट तो आपको दिख जाते हैं, राक्षस हैं, पर कि टेररिस्ट को पूछो तो कहता है मैं तो ये सब धर्म के लिए करता हूं, स्वर्ग जाने के लिए। टेररिस्ट तो चलो दुनिया को दिख जाता है कि ये बड़े राक्षस हैं, मारते हैं, काटते हैं, इराक में आप देखते हैं, सीरिया में देखते हैं, भारत में देखते हैं, कश्मीर में देखते हैं, अमेरिका में भी बम फोड़ते हैं, कितने लोगों को, सामान्य लोगों को मारते हैं। अपने पुराणों में कितने ऐसे राक्षसों की स्टोरी पड़ी होगी जो ऐसे सैकड़ों लोगों को मारते होंगे, लड़ाई में मारते हैं, वो तो लड़ाई में आज भी लड़ाई होती है, पर आप हिटलर को, स्टालिन को, ये टेररिस्ट को क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? अगर आप मानते हैं कि राक्षस कोई अलग टाइप के लोग होते, इंसान नहीं होते, आपके सारे पुराणों के राक्षसों ने जितने लोग मारे होंगे इससे ज्यादा तो एक एक हिटलर ने मारा, स्टालिन ने मारा, टेररिस्टों ने मारा है? सोचिए कभी, हमारे में ही राक्षसत्व है, हमारे में ही देवत्व है। तो वो कहते हैं कि गिविंग देमसेल्व ओवर द इमिजरेबल केयर, सेंडिंग ओनली विथ डेथ, रिगार्डिंग ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लस्ट एज देयर हाइएस्ट एम एंड फीलिंग श्योर दैट दैट इज ऑल। चलो ये तो हमें दिखते हैं कि हिटलर ने मारा, स्टालिन ने मारा, इन लोगों ने मारा, टेररिस्टों ने मारा, जो पैसे कमाने के लिए लाखों लोगों को इनडायरेक्टली मारते हैं, जो मेडिसिन में घपला करके लोगों को मारते हैं, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, जो व्हाइट कलर्ड क्रिमिनल्स होते हैं, जो बहुत ही सिविलाइज्ड दिखते हैं, जिनकी सोसाइटी में बहुत रेपुटेशन है, रेपुटेशन इसीलिए नहीं कि बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि बहुत पैसा है, अभी स्मृति जी कह रही कि आजकल राक्षसों की धरपकड़ चल रही है बिना बताए ही, वो कौन है जो बेटी की मां बाप से शादी करने के लिए पैसा डिमांड करता है इतना कि वो अपने घर जमीन जायदाद सब बेच ले, फिर उसकी बेटी से शादी करके कहता है कि मैं तेरा पति हूं? आप उन्हें राक्षस नहीं मानते? तो फिर राक्षस और कहीं मिलेगा आपको? दहेज लेने वाला अगर राक्षस नहीं है, जो दूसरों के घर उजाड़ के उसकी बच्ची से शादी करने की कोशिश करता है, अगर उसको आप राक्षस नहीं मानते हो तो आप किसको मानते हो? देवियों, सज्जनों, गीता में कृष्ण कहते हैं जिसके लिए ये सांसारिक सुखी सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, ही डजंट केयर, कोई मर रहा है, बढ़ रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसको अपना सुख की पड़ी है, वो राक्षस है। जो इग्नोरेंटली नासमझ के कारण भी लोगों को मारता है, टेररिस्ट लोग, कि हम स्वर्ग जाएंगे मारने से, किसी ने बता दिया, मुल्ला मौलवी ने, ये सब राक्षस कोटि के होते हैं। देवत्व ठीक इसका अपोजिट होता है। हमारे भारत में जो शादी ब्याह करते हैं, जो लोग ज्योतिषी को दिखाते हैं, मिलान कराते हैं लड़का लड़की का, तो वो तीन चार योग बताते हैं कि इनका तो देव असुर मेल बनता है, मतलब एक देवता है और एक असुर है लड़का लड़की में से, तो ये सही नहीं है, ये मनुष्य मानवासुर है, ये इंसान और असुर के मेल जैसा होगा शादी, ये असुर और असुर जैसा मेल जैसा शादी होगी, अच्छी शादी मानी जाती है। ये इंसान और इंसान मानव और मानव वाला मेल वाला शादी होगी, ये भी अच्छी मानी जाती है, मतलब जब दोनों का नेचर एक जैसा हो फिर तो अच्छा ही होगा ना। देव देव थोड़ा बहुत कम हो, जैसे इंसान और असुर थोड़ा बहुत ठीक है, इंसान और देवता थोड़ा बहुत ठीक है, इंसान बीच में होता है, तो देवता असुर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ये ज्योतिष लोग मेल करा के बताए। वैसे आज तक मुझे पता नहीं चला कि जिन्होंने चुन चुन के असुर असुर मानव मानव मिला के शादी किया उनके घर में लड़ाई होती है कि नहीं होती है। और ऐसे हमने बहुत देखा जो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नेचर वाले हैं, देव असुर संबंध होने चाहिए, और उनके घर में बड़े शांति है, पता नहीं ज्योतिष ने उनको क्या बोला होगा। तो बात है कि ज्योतिषी जो कुछ बोलता है उसके पीछे तो कम से कम एक सच छुपा हुआ है कि इंसान में ही देवता है, इंसान में ही असुरत्व है, इंसान में ही इंसानियत है। किसी का स्वभाव देवत्व जैसा है, उसकी लाइफ पार्टनर अगर असुर जैसा विचार लेकर आए, नेचुरली उस घर में शांति नहीं रहेगी। अब ये ज्योतिषी से पूछ के तो नहीं कराने की है ना, ये तो एक दूसरे से मिले जुले जाने पहचाने तब पता चलेगा कि मेरा नेचर मिलता है कि नहीं, तब वो मेल बनेगा। पर हम तो खुद से नहीं बात करते, हम अपनी ज्योतिषी से बात कराते हैं। बात यही है कि हमारे में ही देवत्व है, मनुष्यत्व है, असुरत्व है, कोई बाहर से नहीं होता है। कोई राक्षस कोई अलग चीज नहीं है, देवता कोई अलग चीज नहीं है, इंसान कोई अलग चीज नहीं है। देवता इस संसार के हर वो चीज जिसका हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है वो सब देवता हैं, और इंसानों में भी जो महान गुण धारण करते हैं वो देवता हैं, जो बहुत खराब गुण धारण करते हैं वो राक्षस हैं, जो कॉमन मैन है जिसमें हर तरह का गुण रहता है अच्छा बुरा वो मनुष्य है। अगला सवाल है, ये देव पूजा फिर क्या मतलब है? देव के ईश्वर देवताओं की जो पूजा हम करते हैं, स्वामी जी लिखते हैं देव पूजा का मतलब, इन शोइंग ऑनर टू द वाइज एंड लर्नड पर्सन्स, अपने समाज के ज्ञानी विद्वान लोगों को सम्मान करना, शोइंग ऑनर टू योर पेरेंट्स एंड प्रिसेप्टर्स, अपने माता पिता आचार्यों का, आचार्य मतलब टीचर्स, जो आपको कोई ज्ञान देता है सम्मान करना, इनहेरेंट प्रीचर्स ऑफ ट्रूथ, जो सत्यवादी है सत्य बोलता है सत्य की बात करता है उसको सम्मान देना, न्यायकारी राजा जस्ट रूलर, जो राजा जो शासक न्यायकारी है जस्ट है, जो न्याय के हिसाब से चलता है प्रजा का ख्याल रखता है वो भी देवता के कैटेगरी में आता, वो भी देवता है, उसको भी पूजने की जरूरत है। टू दोज हु लीड राइटस लिप्स, धार्मिक लोग, धार्मिक लोग से मत समझिए कि जो रोज 100 बार माला जपता है 50 बार माला जपता है मंदिर जाता है, नहीं, ये कोई शास्त्र नहीं बोला कि ऐसे लोग धार्मिक है, जैसा कि हमारा मिसपरसेप्शन है। धार्मिक का मतलब है राइटस लाइफ, जिसकी लाइफ अच्छे व्यवहार से चलता है, जिसके जीवन का जो जो गति है, जो जो जिंदा जो जीवन चलाता है उसमें वो धर्म दिखता है, उसका व्यवहार में उसके आचरण में शुद्धता है, वो धार्मिक है। न कि आप कितना पूजा पाठ करते हैं कितना मंदिर जाते हैं, वो तो वो हमारे शास्त्रों में तो कहीं ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कहा। धर्म के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि धर्म क्या है और धार्मिक किसको कहते हैं। तो ऐसे धार्मिक लोगों की सम्मान करना ये देव पूजा है। टू ए वाइफ फेथफुल टू हर हस्बैंड, हस्बैंड लॉयल टू हिज वाइफ, एक पत्नी के लिए उसका पति देव है, एक पति के लिए उसकी पत्नी देवी है, एक दूसरे को सम्मान करना भी देव पूजा है। देखिए स्वामी दयानंद जी की कितना कितना बारीकी विचार है, ये समझने की जरूरत है स्वामी जी को अगर समझना है। ऐसा नहीं कि आप बाहरी दुनिया में सबको रेस्पेक्ट करिए जो अच्छे हैं, पति पत्नी को भी एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, प्रेम भाव हो ना हो सम्मान भाव जरूर होना चाहिए, रेस्पेक्ट ईच अदर। जब आपके अंदर वो सम्मान भाव कम हो जाता है तो फिर आप अपनी पति या पत्नी को सेकेंडरी समझने लगते हो और वो आपके व्यवहार में झलकता है, पता लग जाता है कि आप पत्नी को घर की अनपेड दासी समझते हो या अपनी बराबर समझते हो, अपनी पति को पैसा कमाने वाला मशीन समझते हो या अपने पति समझते हो। ये लोगों के व्यवहार से पता लगता है। पर जो पति पत्नी को देवी समझे सम्मान दे, पत्नी पति को देव समझे सम्मान दे, वो दोनों एक दूसरे के लिए देव और देवता हैं। ध्यान रखिए, अगर ऐसा कोई पति पत्नी संबद्ध हो तो उस वो घर स्वर्ग से बढ़कर होता है, दूसरे लोगों को उस घर से प्रेरणा लेनी होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पत्नी को देवी मानते हैं या अपने पति को देव मानते हैं तो आप लड़ेंगे नहीं, लड़ना तो एक अलग चीज है ना। अब दो वर्तन घर में रहेंगे तो टकराएंगे, दो इंसान है दोनों के अंदर बुद्धि है विवेक है हर बात पर, तो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही टाइप का विचार रखें, दो अलग अलग विचार होगा तो बहस होगी, बहस को लड़ाई कहते हैं। मैं लड़ाई का मतलब थोड़ी है क्या बर्तन फेंके मैं झाड़ू फेंकू, ऐसा नहीं है। डिबेट होता है, आर्गुमेंट होता है, कभी कभी हम आर्गुमेंट को लड़ाई समझ बैठते। नहीं, कोई भी हेल्दी सोसाइटी हो, हेल्दी फैमिली हो, हेल्दी कम्युनिटी हो, उसमें आर्गुमेंट होना जरूरी। आर्गुमेंट एक अच्छा लक्षण है। अगर आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब समवन इज सप्रेस्ड एंड समवन इज सप्रेसिंग। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों का विचार हर जगह एक जैसा मिले। ध्यान दीजिएगा, 10 लोग बैठे, आपने एक विचार रखा, ये हो ही नहीं सकता कि 10 लोगों का विचार एक जैसा हो। बुद्धि अलग अलग है। अगर आपने आर्गुमेंट होने नहीं देते हो, अगर किसी को लगता है कि यहां तो आर्गुमेंट होता नहीं है, ये सुपरफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है, ये जबरदस्ती थोपा गया, थोपी गई शांति है। नहीं, आर्गुमेंट को कभी भी झगड़ा मत समझिएगा। यही है रेस्पेक्ट। आप रेस्पेक्ट करते हैं तो दूसरे के अपोजिट सोच को भी सुनना पड़ेगा। रेस्पेक्ट का यह अर्थ नहीं कि जो बोल दिया वो सामने वाला, या मैं जो बोलूं तो तुम्हें मानना है, जो तुमने बोला मुझे मानना है। रेस्पेक्ट का मतलब यहीं से समझ में आता है, अगर मैं कुछ बोलूं तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप कुछ बोले तो मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। मुझे अगर उसमें समझ में नहीं आता है, मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं उसमें ऑब्जेक्शन रख सकता हूं। आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, इसका प्रमाण है कि आप मेरे ऑब्जेक्शन को सुनते हो, डिस्कस करते हो, पॉजिटिवली लेते हो। इसलिए ये गलत फहमी मत रखिए कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने का मतलब है कि बस हम झगड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं, मन में दबा के रखेंगे, जहर पीते रहेंगे। नहीं, पर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। एक दूसरे को सम्मान करना, यही है देवत्व, देव पूजा। भारत के लोगों में जो हमारे पुराने शास्त्रों में जो विचार थे, धीरे 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 उसमें बहुत सारे परिवर्तन आया, बहुत सारे बदलाव आए, चेंजेस आए, अच्छे की जगह बुरे आए, बुरे की जगह अच्छे आए, बहुत सारे सुधार चेंजेस आए, और बहुत सारे अपने अर्थ को, उसके मीनिंग को खोज चुके, मीनिंगलेस होकर के रिचुअल के रूप में चलते हैं। जैसे अगर आप मीनिंग समझे तो आपको लगेगा कि आप बड़े अच्छे काम करते हैं। हमारे यहां पशु पक्षी पेड़ पौधे हवा पानी आकाश सबको, धरती सबको हम पूजते हैं। अलग अलग त्योहार है पूजने का, सांप को भी पूजते हैं, सबको पूजने की है। हमें पता नहीं आजकल, क्योंकि हमें पता नहीं, मीनिंगलेसली रिचुअल के रूप में करते हैं तो फिर सुपरस्टिशियस बन जाते हैं। उसके पीछे जो अर्थ था यही था क्या, जिसका भी तुम्हारे लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है या कोई ज्ञानी महात्मा महान है, वो तुम्हारे लिए देव है और उसकी पूजा करनी चाहिए। तो हम पूजा करते हैं, पर पूजा क्योंकि हम बिना समझे कर रहे हैं, रिचुअलिस्टिक होकर कर रहे हैं, तो पूजा में ही सारी गड़बड़ियां होती है। और हमें पता नहीं, पूजा करना ये तो पता है पर कैसी पूजा करनी है पता नहीं। पंडितों ने, मॉडर्न पंडितों ने नए नए श्लोक रच दिया हिंदी में संस्कृत में, उसको पढ़ के पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करने जाते हैं। बहुत सारे त्योहार होते हैं जिसमें पेड़ को पूजते हैं महिलाएं, वो धागा बांधते हैं, उसके पास गुड़ चीनी पता नहीं मिठाई रखते हैं, उसको चींटी खाते हैं, और वो छोटा, जो अगर छोटा प्लांट हो वैसे ही मर जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा गुड़ चीनी मीठा रखेंगे वो चींटी काटते जाते हैं, बड़ा पेड़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गड़बड़ी कहां पर है? पूजा क्या है समझने में। स्वामी जी पूजा के लिए जो शब्द यूज करते हैं कॉमन भाषा में, शोइंग ऑनर। पूजा का यही अर्थ है, किसी को खुश करना, किसी को सम्मान देना। जो लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जब आप पूजा करते हो, पूजा करने के बाद पंडित जी आपको प्रसाद देते हैं, आप मंदिर से प्रसाद लेकर आते हो, इवन आप घर में भी पूजा करते हो तो उसके बाद जाकर के प्रसाद बांटते हो। आपको पता है प्रसाद का मतलब क्या है? वैसे बहुत बार बताया होगा, कुछ नए लोग हैं तो। प्रसाद का लिटरेरी मीनिंग है खुशी, प्रसन्नता और प्रसाद एक ही मीनिंग है, हैप्पीनेस। मतलब आपने किसी को पूजा, वो खुश हुआ और उसकी खुशी लेकर आप आ रहे हैं। क्योंकि आपकी पूजा बड़ी नकली है तो प्रसन्नता भी तो नकली लेकर आ रहे हैं ना, असली प्रसन्नता नहीं मिलती। तो आप क्या लेकर आते हैं? लड्डू, केला। बोले ये है भगवान की प्रसन्नता, वो आप ही ले गए थे, आप ही वापस ले आए। बोले ये प्रसन्नता, ये रिचुअलिस्टिक है। क्योंकि आप नहीं समझ पाए तो आप रिचुअल को ही सच समझने लग गए। आपको पता नहीं है ना, आपके पंडितों को पता है। पूजा का अर्थ है किसी को खुश करना, खुश, रेस्पेक्ट देना। आप मुझे रेस्पेक्ट देंगे, नेचुरली जो रिएक्शन होगा मेरे अंदर वो खुशी होगी। आप किसी से काम निकलवाने जाते हैं, किसी लीडर के पास, पॉलिटिकल लीडर के पास, किसी ऑफिसर के पास, कुछ काम नहीं बन रहा है, थोड़े अकड़ के जाते हैं, थोड़ा पोलाइटली बिहेव करते हैं, ग्रीट करते हैं, हेलो हाय नमस्ते जो भी करते हैं, मीठा बोलते हैं, उसको थोड़ा फील कराते हैं कि, तो वो देखिए काम कैसे करता है। अगर नहीं किया है तो करके देखिए कितना आसान होता है काम करना। ये नेचर है। पूजा का अर्थ होता है आप किसी को ऑनर करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि उसके आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, और यू आर शोइंग योर ऑनर। पेड़ को आप कैसे ऑनर करेंगे? पानी डालिए, गर्मी में उसको पानी की जरूरत है, बकरी गाय वगैरह से उसको बचाइए। देखिए पेड़ आपको कैसे प्रसाद देगा, पेड़ का क्या प्रसाद होगा? छाया देगी, फल देगा, जो आपको चाहिए वो सब मिलेगा। गाय की आप पूजा करते हैं, अब गाय की पूजा हम क्या करते हैं? वही धागा बांध देते हैं, माला लगा देते हैं, आरती उतारते हैं, पर रस्सी में बंधी मिलेगी आपको, खुली गाय को नहीं पूछते, लात मारेगी। अब गाय में अगर बोलने की क्षमता होती और आप पूजा कर रहे होते उसकी रस्सी बंधी हुई गाय को, क्या बोलती? दुष्ट पापी, गले में रस्सी बांध रखे हो, मेरे बछड़ों को दूध तक पीले नहीं देते हो, चूस चूस के सारे दूध निकाल लेते हो, आरती उतारते हो पाखंडी। बेचारी गाय बोल नहीं पाती है और हम खुश होकर कहते हैं कि मैं गाय की पूजा कर रहा हूं। गाय क्या प्रसाद देगी बताइए? तो गाय कैसे प्रसाद देगी? प्रसाद उसको आप खुला छोड़िए, उसको बछड़ों को थोड़ा दूध पीने दीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यज्ञ में वही घी का प्रयोग होना चाहिए, दूध दही घी वही होना चाहिए जो बछड़े के तृप्त होने, तृप्त समझते, जब बछड़ा सेटिस्फाइड हो जाए दूध पीकर, उसके बाद जो गाय में बचा हुआ दूध उसको निकालकर जब आप उसको यूज करते हैं, वही घी ही अपने लिए और यज्ञ पूजा में प्रयोग में होना चाहिए। ठीक है, आजकल तो ऐसा कुछ अवसर ही नहीं मिलता हमारे पास, ये शास्त्रों का विधान है। तो गाय को अगर आप चारा खिलाते हैं, हरे चारे खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, थोड़ा खुले घूमने देते हैं, उसके बछड़े को दूध पीने देते हैं, हो गई पूजा, गाय खुश होगी। और हो सकता है अगर एक लीटर देती है तो दो लीटर देगी। आप अपने देखिए, कुत्ता बिल्लियों को देखिए जो आपके पेट हैं, जब प्यार करते हैं उनको आप फ्रीडम देते हैं, वो कितना आपके पीछे पागल की तरह घूमते हैं, आपकी केयर करते हैं। ये पूजा करते हैं आप कुत्ता और बिल्ली की, गाय की तो नकली पूजा करते हैं, असली पूजा तो आप कुत्ता और बिल्ली की करते हैं। उनको फ्रीडम देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। पानी की पूजा पानी में आरती उतार करके नहीं होती है, गंगा आरती उतार करके नहीं होती है, वो तो आपको थोड़ा एंटरटेन होता है। अब और एक मिसपरसेप्शन, आजकल एंटरटेनमेंट को रिलीजियस सेटिस्फेक्शन माना जाता है, ये भी बड़ी अजीब बात है। तो देवियों सज्जनों, पूजा का अर्थ है आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, और हर चीज को रिस्पेक्ट करने की अलग तरीका है। आप एक इंसान को अलग तरीके से संतुष्ट पूजा करते हैं, आप अपनी गाय को अलग तरीके से पूजा करेंगे, उसको चारा घास खिला करके। पानी की पूजा है कि पानी को फ्लो होने दीजिए, उसमें गंदगी ना पड़े, तो पानी की पूजा होगी। पेड़ों को ख्याल रखिए, पेड़ की पूजा होगी। तो कहने का भाव है कि हमारे वो जो प्राचीन सोच था, परसेप्शन था, कंसेप्ट था कि देवता मतलब वो हर कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जड़ चेतन जिसका हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है वो देवता है और उसको पूजा करनी चाहिए, और मनुष्यों में जो अच्छे गुण वाले हैं, महात्मा महान आत्मा वाले लोग हैं, अच्छे गुण वाले हैं, वो भी देवता हैं, उन सब की पूजा करनी चाहिए। पर पूजा कैसी हो, पूजा का मतलब है किसी को खुश करने की कोशिश करना। जिस तरीके से व्यक्ति खुश हो वो पूजा है, जिस तरीके से पेड़ खुश हो वो पेड़ की पूजा है, जिस तरीके से गाय खुश हो वो गाय की पूजा है, जिस तरीके से पानी खुश हो, किसी को भी, पेड़ पौधा आकाश वायु, जिसको भी आप खुश करना चाहते हैं। खुश का अर्थ लिटरली मत लीजिए, किसी को उसके अपने स्वस्थ होने देना चाहते हैं उस तरह करिए, तो आप देखेंगे वो असली देव पूजा होगी। लास्ट में स्वामी जी लिखते हैं, एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू दिस इज एंटी देव पूजा। इसके अलावा इसकी उल्टा अगर आप कुछ करते हैं वो तो देव पूजा हो ही नहीं सकता, वो हम जाने कि हमें पता वो हम क्या करते हैं। द पर्सन ऑफ द एफोरसेड इज वर्थी ऑफ होमेज। जिन मनुष्यों में जिनकी चर्चा हमने की, ये गुण वाले लोग, वो सब पूजा के लायक हैं, सम्मान के लायक हैं। बाकी वाइल द वर्शिप ऑफ द डेड, माँ बाप को जीते जी सम्मान करो, उनका ख्याल रखो, वो खाना खाया नहीं खाया उनका ध्यान रखो, उनसे बातचीत करो, उनको रेस्पेक्ट करो, बूढ़े माँ बाप को, वो उनकी पूजा है। मरने के बाद श्राद्ध के नाम पर पूजा करना ये स्टुपिडिटी है, ये एंटी देव पूजा है, ये इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि मरने के बाद फोटो में माला डालो, जीते जी तो कभी पूछा नहीं। इनर्ट ऑब्जेक्ट्स, जड़ चीजों को पूजना, आरती उतारना, फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये स्टुपिडिटी है। एंड द इनसेंटिएंट आइडल्स, एक छोटी सी बात करके खत्म करेंगे। किसी ने बोला क्या फर्क पड़ता है वो आइडल को पूजने में, भगवान आप कहते हो सब जगह है, तो मूर्ति में भी तो भगवान है, तो किसने मना किया मूर्ति में भगवान है? अगर आप मानते हो कि सब में भगवान है तो फिर तुम्हें एक पत्थर को लकड़ी को तराश के मूर्ति बना के पूजने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों तुम अपने बीबी को या पति को नहीं पूजते हो? क्यों नहीं तुम अपने पड़ोसी को पूजते हो? क्यों नहीं तुम इस संसार के हर वो चीज को पूजते हो? पूजना, अगर तुम्हें पता है कि संसार में ईश्वर सब जगह, वो पूजना शुरू करो। देवियों देव सज्जनों, ईश्वर ने आपको बनाया, आप ईश्वर के द्वारा बने हुए हो, और आप हमेशा कौन किसको पूछता है? जो छोटा है बड़ों को पूछता है, जिसको एहसान है, जिसका एहसान मिला उसको पूछता है। मनुष्य में और मूर्ति में बड़ा कौन है? मनुष्य को इन सब परमात्मा ने बनाया, मूर्ति को किसने बनाया? इंसान ने बनाया, कारीगर ने बनाया। मतलब ईश्वर का बना हुआ चीज इंसान के बने हुए चीज को पूछता है। छोटा कौन है बड़ा कौन है आप देख लीजिए। देवियों सज्जनों, परमात्मा सर्वव्यापी है, वो परमात्मा परम देव है, उसकी पूजा करिए। बाकी संसार में हर वो प्राणी, जड़ चेतन, प्राणी अप्राणी, जिनको आपको लगता है आपके जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है, वो सब देवताएं हैं, उनको रेस्पेक्ट करिए जैसा उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और मनुष्य में जो भी अच्छे दिव्य आत्मा वाले हैं, अच्छे सज्जन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अपनी माँ बाप पति पत्नी गुरुजन और जो भी संसार में अच्छे लोग हैं वो सब देवता हैं, उन सबको रेस्पेक्ट करना, यही असली देव पूजा है। यही स्वामी जी का भाव था, अपने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।